HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
शक्तिपीठों की यात्रा में हम अभी तक 28 शक्तिपीठों के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने कैलाश अमरनाथ नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक और बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक के विभिन्न शक्तिपीठों की यात्रा तय की, जिनमें से मुख्य हैं पाकिस्तान हिंगलाज, मानस शक्तिपीठ कैलाश, गंडकी शक्तिपीठ नेपाल, महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ, शुचि देश शक्तिपीठ कन्याकुमारी, महालक्ष्मी शक्तिपीठ महाराष्ट्र से, उज्जैन का हरसिद्धि शक्तिपीठ, काशी का माँ विशालाक्षी, जय दुर्गा शक्तिपीठ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर, हिमाचल से माँ नैना देवी, बांग्लादेश से माँ उग्रतारा और वृंदावन की माँ कात्यायनी प्रमुख हैं। इसी श्रृंखला में आइए जानते हैं रहस्यमयी कामाख्या मंदिर के बारे में, जो रहस्यों से भरपूर है, जहाँ माँ हर साल चमत्कार दिखाती हैं और अपने होने का प्रमाण देती हैं। यहाँ पर माता सती के योनि अंग का निपात होने से हर साल आषाढ़ के महीने में वो 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं। इसको चमत्कार माने या उनकी महिमा, उनके पिंड से लगा सफेद कपड़ा लाल हो जाता है, कपाट 3 दिन के लिए स्वतः ही बंद हो जाते हैं और किनारे पर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का बहता जल भी लाल हो जाता है और उसी दौरान तप कर रहे अघोरी तांत्रिक अपनी विद्या को सिद्ध करने और अपनी शक्ति बढ़ाने की भिन्न भिन्न तरीके से साधना करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान उस स्थान की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, जिसका उपयोग लोग सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों के लिए करते हैं।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहां कैसे पहुंचे।
क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः।
कामाख्या देवी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में महापीठ के नाम से जाना जाता है। देवी के स्थानों को अक्सर हम शक्तिपीठ या सिद्धपीठ के नाम से जानते हैं, लेकिन इस स्थान की महिमा इतनी अनंत है कि इसको महापीठ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि देवी माँ यहाँ साक्षात विराजती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या देवी शक्तिपीठ। ये स्थान अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। सतयुग से स्थापित यह तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। इस शक्तिपीठ में मैं आपको लेकर चलूंगी आसाम के नीलाचल पर्वत पर, जहां स्थित है मां कामाख्या का मंदिर। कामाख्या वह स्थान है जहां सभी इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण इसे कामरूप भी कहा जाता है। यहां देवी मां अपनी 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में स्थापित हैं। ये स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव का आश्रय है। इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी भैरवी हैं, जिन्हें कामाख्या देवी या नीला पार्वती के नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ भगवान शिव भैरव उमानंद के रूप में स्थापित हैं। माँ कामाख्या को प्रसन्न करने का मंत्र है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामनाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते, कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शनम देव्या सर्व कामार्थ सिद्धये। अर्थात, हे कामाख्या देवी, कामना पूर्ण करने वाली, कामना की अधिष्ठात्री, शिव की प्रिय, मुझे सदा शुभ कामनाएं दो और मेरी कामनाओं को सिद्ध करो। हे कामना देने वाली देवी, कामना के रूप में ही स्थित रहने वाली, सुंदरी और देव गणों से सेविता देवी, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपके दर्शन करता हूँ। देवी भागवत में पर्वत राज हिमालय द्वारा श्री देवी भगवती जगदम्बा से उनके परम प्रिय स्थलों के संबंध में पूछे जाने पर देवी जगदम्बा स्वयं कहती हैं कि मेरी स्वरूप देवी सती का योनि भाग जहाँ गिरा वो स्थान कामरु वर्तमान में गुवाहाटी नामक देश में स्थित है। महामाया से सुशोभित देवी कामाख्या का यह पवित्र स्थान पूरे जगत में रत्न है। धरातल पर इससे बढ़कर प्रसिद्ध स्थान अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यहाँ का अंबुवाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्षों में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्षों में एक बार तथा कली काल में प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। ये एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म के चक्र से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं, जिसके कारण यहाँ की संपूर्ण भूमि देवीमयी हो जाती है। यही कारण है कि कामाख्या योनि मंडल नामक इस पावन स्थल को सभी पवित्र स्थलों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उन्हीं 3 दिनों के लिए यहाँ पर अम्बुवाची मेला लगता है, जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगी। कामाख्या मंदिर। ये मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता का गर्भगृह है। माता का गर्भगृह एक प्राकृतिक गुफा है। दूसरे प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर यह गर्भगृह आता है। ये बिल्कुल अंधेरी जगह है, जहाँ कोई लाइट नहीं है। यहाँ अखंड ज्योति जलती रहती है। ये गर्भगृह सिर्फ दियों से ही प्रकाशित होता है। यहाँ से संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है, क्योंकि देवी माँ ही समस्त संसार की जननी है। कितना अद्भुत है ये स्थान। सोचिए, ये वो स्थान है जहाँ से संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है। इस स्थान पर देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में ही होती है। सतयुग में माँ की योनि यहाँ आकर गिरी और वो पिंड रूप में परिवर्तित हो गई। ये योनि के आकार का ही शिलाखंड है। ये रक्त वर्ण की साड़ी, फूल और सिंदूर से ढका रहता है। ये स्थान जीवित है। इस योनि पिंड से हर वक्त पानी निकलता रहता है, जिसका स्रोत किसी को नहीं पता। इस स्थान पर बड़े बड़े तांत्रिक साधु साधना करते पाए जाते हैं, जिन्हें अनेक मारक व वशीकरण मंत्रों की सिद्धि प्राप्त है। देवी के प्रसाद रूप में माँ के रक्त से भीगे वस्त्र पाने के लिए वो लालायित रहते हैं, क्योंकि इस स्थान से निकलने वाले जल और वस्त्र का प्रयोग अनेक तांत्रिक सिद्धियों में किया जाता है। ये गर्भगृह ऊर्जा का केंद्र है। मंदिर के प्रांगण में कई अन्य मंदिर भी हैं। बाहर नारियल चढ़ाने का स्थान और दिया जलाकर पूजा करने और उपासना करने का मंडप भी है। यहाँ कई साधक और तांत्रिक साधना करते मिलते हैं। इस मंदिर परिसर में आपको तंत्र विद्या से जुड़े सामान के अंश भी मिलेंगे, जो विद्या सिद्ध करने में महत्वपूर्ण है। इस स्थान के दर्शन मात्र से आपके सभी कष्ट, भूत प्रेत बाधा व वशीकरण समाप्त हो जाते हैं। कालिका पुराण के अनुसार नीलाचल पर्वत पर देवी का योनि मंडल गिरकर नील वर्ण का प्रस्तर यानी पत्थर का पिंड रूप हो गया। इस हेतु ये पर्वत नीलाचल के नाम से विख्यात है। उसी पिंड रूप योनि में कामाख्या देवी नित्य निवास करती हैं। देवी भागवत में वर्णन आता है कि नीलाचल पर्वत पर सभी देवता पर्वत रूप में अवस्थित हैं और उस पर्वत का भूभाग देवी का स्वरूप है। उसमें लिखा गया है कि पहले ये पर्वत बहुत ऊंचा था। महामाया के गुप्तांग का निपात होने से पर्वत डगमगाने लगा और पाताल में प्रवेश होने लगा। ये देख ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों ने पर्वत के एक एक श्रृंग यानी शिखर को धारण किया, फिर भी वो पाताल में ही समाने लगा। तब महामाया ने अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा पर्वत को धारण किया। आज भी ये पर्वत श्रृंखला ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर्वत के नाम से तीन चोटियों में विभाजित है। पूर्व में जहाँ भुवनेश्वरी महापीठ है जिसे ब्रह्म पर्वत, मध्य भाग में जहाँ महामाया का पीठ है उसे शिव पर्वत, और पश्चिम भाग में जो पर्वत है उसे विष्णु पर्वत अथवा वाराह पर्वत के नाम से जाना जाता है। वाराह पर्वत पर वाराही कुंड अभी भी दिखाई पड़ता है। कुब्जा तंत्र में कहा गया है कि यहाँ कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसलिए ये काम रूप के नाम से प्रख्यात हुआ है। विशेषकर कलयुग में ये स्थान विशिष्ट रूप से जागृत है, इसी कारण इसे कामरूप कहा गया है। वहीं योगिनी तंत्र में वर्णन आता है कि कामरूप देश देवी क्षेत्र के नाम से भी तंत्रों और पुराणों में वर्णित है। इसके समान दूसरा कोई स्थान नहीं है। देवी माँ और जगहों पर दुर्लभ हैं, किंतु कामरूप में वो घर घर में निवास करती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रतिपति कामदेव शिव की क्रोधाग्नि से यहीं भस्माभिभूत हुए और पुनः उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपना पूर्व स्वरूप पाया और पुनः उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपना पूर्व स्वरूप भी यहीं प्राप्त किया, इसीलिए इस देश का नाम कामरूप पड़ा। इसकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में वर्णित है। शिव पार्वती के विवाह के समय काम पत्नी देवी रति भी विवाह स्थल में उपस्थित होकर अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित से महादेव और माता की वंदना करने लगी। विष्णु आदि सभी देवताओं और देवियों ने भी कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रेममयी दृष्टि के प्रभाव से कामदेव पुनः उनके भस्म से शरीर रूप में प्रकट हुए, परंतु कामदेव को पहले का सा स्वरूप प्राप्त न होने के कारण पति और पत्नी दोनों पुनः महादेव से निवेदन करने लगे। भोलेनाथ ने संतुष्ट हो कामदेव को आदेश दिया कि भारत वर्ष के ईशान कोण पर नीलाचल पर्वत पर अभी भी सती देवी के 51 खंडों में से एक खंड गुप्त रूप में है, वहीं जाकर देवी की महिमा की प्रतिष्ठा तथा उनका उपचार करने से तुमको पहले की सी कांति पुनः प्राप्त हो जाएगी। तब नीलाचल पर्वत पर आकर उन्होंने महामुद्रा पीठ में भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से पूजा अर्चना संपादित की और देवी की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। इससे भगवती प्रसन्न हुई और करुणामयी जगदम्बा की कृपा से कामदेव ने अपना पूर्ण रूप प्राप्त किया। उसके बाद सभी देवी देवता यहां आकर महामाया की स्तुति पूजा आदि करने लगे। देवी महात्मय के प्रचार के उद्देश्य से कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा से इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की दीवारों पर 64 योगिनी और 18 भैरव की मूर्ति खुदवा कर कामदेव ने इसे आनंदाख्य मंदिर के नाम से प्रचारित किया, जो समय के साथ साथ कामाख्या हो गया। आजकल इस मंदिर का नीचे का भाग ही शेष रह गया है। सर्वप्रथम कामदेव ने ही इस महामुद्रा पीठ का महात्म्य जगत में प्रसिद्ध किया था, इसलिए इस महामुद्रा को मनोभाव गुहा भी कहा जाता है और कामदेव से इस स्थान को कामरूप नाम मिला। कामरूप बहुत ही प्राचीन नाम है। ये पुण्य भूमि भारत वर्ष के ईशान कोण में अवस्थित है। रामायण महाभारत सहित कई तंत्र और पुराणों में भी इस कामरूप क्षेत्र का उल्लेख पाया जाता है। योगिनी तंत्र और कालिका पुराण में विशेषकर कामरूप क्षेत्र का विस्तृत वर्णन है। योगी तंत्र और कालिका पुराण में तो इसकी सीमा तक बताई गई है। पश्चिम में करतोया से दिक्कर वासिनी तक, उत्तर में कंजगिरी, पूर्व में तीर्थ, श्रेष्ठ दिक्षु नदी तथा दक्षिण में ब्रह्मपुत्र और लाक्षा नदी के संगम स्थान तक कामरूपी की सीमा है। कामरूप त्रिकोणाकार है। इसकी लंबाई 100 योजन और विस्तार 30 योजन है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र योगिनियों और ऋषियों का निवास स्थल था। महामुनि वशिष्ठ, गोकर्ण तथा कपिल मुनि आदि के आश्रम इसी कामरूप में अवस्थित थे। वर्तमान समय में कामरूप असम का एक जनपद मात्र रह गया है। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और आज भी बहुत सुंदर है। कामाख्या देवी मंदिर के निर्माण के संबंध में एक और कथा है जो बहुत प्रचलित है। कालांतर में नरकासुर ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया। उसके चारों मार्गों पर व्याघ्र द्वार, हनुमंत द्वार, स्वर्ग द्वार, सिंह द्वार तथा पत्थर से निर्मित चारों पथ राजा नरकासुर ने ही बनवाए थे। नरकासुर का जन्म वाराह अवतार के समय हुआ था, जब उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था। वो भगवान वाराह और पृथ्वी का पुत्र था। असुर जाति का होने पर भी उसमें आर्य भाव था और वो अच्छे कर्म करता था। भगवान नारायण ने अपने पुत्र से प्रसन्न हो इसे कामरूप का राज्य प्रदान किया और कहा, तुम देवताओं और ब्राह्मणों के प्रतिकूल आचरण ना करना तथा अपने स्वाभाविक आसुरी चरित्र का प्रदर्शन ना करना। जगन माता महामाया के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना नहीं करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। वो कामाख्या देवी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने उनसे वरदान मांगा कि हे माँ, मैं भूमि पुत्र हूँ और मेरी मृत्यु यदि हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। माता की कृपा से उसकी राज्य लक्ष्मी में वृद्धि होती रही। इस तरह त्रेता से द्वापर युग तक उसने राज्य किया। द्वापर के अंतकाल में बाणासुर शोणितपुर का राजा हुआ। बाणासुर और नरकासुर दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। कुसंगति से कुप्रेरणा हुई और वो धर्म विपरीत कार्य करने लगा। धीरे धीरे वो देवी की पूजा से भी विमुख हो गया। एक दिन महर्षि वशिष्ठ माँ कामाख्या के दर्शन हेतु आए और नरकासुर ने इसमें बाधा उत्पन्न की। इस पर रुष्ट होकर महर्षि ने श्राप दिया, जब तक तू जीवित रहेगा महामाया, सब परिवार अंतर्ध्यान रहेंगी, जिससे कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। कामाख्या पीठ के लुप्त होने से नरकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया। उसने सबसे बड़ा अपराध 16,100 कन्याओं का अपहरण करके किया। सभी देवी देवताओं मनुष्यों ने नारायण से इस दैत्य से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। इस समय नारायण श्री कृष्ण अवतार में थे। उनकी पत्नी सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतार थी। वरदान के अनुसार नरकासुर का वध केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकता था। तब श्री कृष्ण ने माता कामाख्या का ध्यान करके कहा कि अब महामाया आप ही अपनी माया रचाइए, नरकासुर का समय निकट आ गया है। भगवती ने नरकासुर को अपनी लावण्यमयी छटा दिखाई, जिसे देखकर वो मोहित हो गया। उसने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाने की इच्छा प्रकट की। देवी ने कहा, यदि एक ही रात्रि में तू इस पर्वत के चारों ओर प्रस्तर मार्ग यानी सड़क बनवा देगा और एक विश्राम गृह का निर्माण करवा देगा तो मैं तेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी। नरकासुर ने प्रसन्नता पूर्वक ये कार्य प्रारंभ किया। उसने मार्गों का निर्माण भी कर डाला, किंतु भवन निर्माण के समय देवी के मायावी मुर्गे ने असमय ही रात्रि समाप्ति की सूचना दी। वो इस मुर्गे का पीछा करता हुआ ब्रह्मपुत्र के तट तक आया, जहाँ श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध हुआ। श्री कृष्ण युद्ध में बेहोश हो गए। तब सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह किया, अर्थात उनको संरक्षण प्रदान किया। ये शक्तिपीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस शक्तिपीठ के दर्शन एवं उपासना से भय, भूत आदि नष्ट हो जाते हैं एवं असीम शक्ति की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत श्रृंखला की एक चोटी पर स्थित है कामाख्या मंदिर। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कामाख्या देवी द्वार से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। पहाड़ी पर पहुंचकर प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से प्रसाद लेकर आप पुरोहित भी बुक कर सकते हैं, जो आपको सरलता से सब समझाते हुए दर्शन कराते हैं। यहीं से मंदिर की सीढ़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ 150 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचते हैं। इस मंदिर में दर्शनों के लिए अक्सर लंबी लाइन लगी होती है। सामान्य दिनों में आधे से एक घंटे में और महोत्सव के दिनों में 3 से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने टिकट काउंटर है, जहां से आप वीआईपी दर्शन का टिकट ले सकते हैं। इससे आपको लंबा समय लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कामाख्या मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर देवी की क्रीड़ा पुष्करणी तालाब है, जिसे सौभाग्य कुंड भी कहते हैं। मान्यता है कि इसकी परिक्रमा से पुण्य मिलता है। यात्री इस कुंड में स्नान के बाद श्री गणेश जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के सामने 12 स्तंभों के मध्य स्थल में देवी की मूर्ति दिखती है। इसे हर गौरी मूर्ति या भोग मूर्ति कहते हैं। इसके उत्तर में वृषवाहन, पंचवक्त्र, 10 भुज कामेश्वर महादेव हैं। दक्षिण में 12 भुजी सिंहवाहिनी तथा 18 लोचना कमलासना देवी कामेश्वरी विराजती हैं। यहाँ का प्रमुख त्योहार अम्बुबासी योग महोत्सव है। अश्विन मास यानी जून के महीने में अत्यंत धूमधाम से इसे यहाँ मनाया जाता है। ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है। तब यहाँ इतने भक्त माता का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं कि लाइन में 3 से 5 घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। अम्बुबाची शब्द अम्बु और बाची दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अम्बु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उत्फूलन। ये शब्द स्त्रियों की शक्ति और जन्म क्षमता को दर्शाता है। प्रतिवर्ष जब माँ कामाख्या ऋतुमती रहती है, तब यहाँ मेला लगता है। अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। 4थे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोला जाता है। भक्त पहले दिन कामेश्वरी देवी और कामेश्वर शिव के दर्शन करते हैं और तब गर्भगृह में महामुद्रा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहते हैं कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के आसपास सफेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब कपाट के पट खोले जाते हैं, तब ये वस्त्र माता के रज से रक्तवर्ण के हो जाते हैं। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। कामाख्या में अम्बुबाची पर्व के अलावा 2 उत्सव और भी मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है देवध्वनि, जिसे देवधाबी कहते हैं। इनमें वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र में पुष्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कामेश्वर की चल मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। 2रे दिन भगवती के पंचरत्न मंदिर में दोनों मूर्तियों का हर गौरी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले के दौरान तांत्रिक शक्तियों को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक अपने एकांतवास से बाहर आते हैं और अपने शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू पर स्थित है। मान्यता है कि इसके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदा शिव को कामदेव ने काम बाण मार कर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर शिव ने अपने 3रे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। फिर भगवती के महातीर्थ नीलाचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था। इस स्थान पर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। गुवाहाटी यहां का निकटतम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है। यहां से सरलता से टैक्सी व बस द्वारा मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे पंजाब के जालंधर में और दर्शन करेंगे त्रिपुर मालिनी शक्ति पीठ के, जहां माता के वाम वक्ष का निपात हुआ था।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल HT Smartcast।